Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Ashtotra Shata Shri Srimad His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtottar Shat Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. श्री श्री निताय गौरचंद्र की श्री पंचतत्व भगवान की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Supadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane Vancha Kalpataru Bhascha Kripa Sindhu Bevacha Patitana Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namonamaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. आप सभी का आज के इस रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम में स्वागत है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वादशी है, ऐसा कहते हैं कि आज का दिन देवताओं के लिए अत्यंत पवित्र है। देवता लोग आज के दिन चंद्रभागा तीर्थ पंढरपुर क्षेत्र में आकर स्नान करते हैं, क्योंकि कल आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन लाखों वैष्णवगण भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। उसका लाभ लेने के लिए देवतागण दूसरे दिन आते हैं द्वादशी के दिन। तो आज का ये दिन जो है, आज हम इस पंढरपुर क्षेत्र के बारे में बोलने वाले हैं। पंढरपुर क्या है, भगवान पांडुरंग कौन है, इस क्षेत्र की महिमा क्या है, इसके बारे में आज जरा विचार करेंगे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक अत्यंत सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भू वैकुंठ पंढरपुर। आप देखेंगे ये मराठी में है, लेकिन इसमें बहुत सारे पुराणों से, खास करके स्कंद पुराण और पद्म पुराण से उन्होंने सारा जो शास्त्रों का ज्ञान है पंढरपुर के बारे में लिखा हुआ है, उसी से हम कुछ चर्चा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कलयुग के लिए युग धर्म क्या है, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे केवल एक ही बात बताई है, बाकी वेदों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे बताया मुझे। उन्होंने एक श्लोक पढ़ाया, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में हरिनाम और हरिनाम, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। श्री प्रभुपाद भी कहते थे कि 99% आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो केवल इस हरिनाम से आएगी। कितनी? 99%। आप समझ सकते कितना महत्वपूर्ण है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जब जपा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कितने अधिक महत्व उसको देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को हर साल जगन्नाथपुरी में हजारों की संख्या में सारे भक्त नवद्वीप मायापुर और पूरा बंगदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल से लोग आते थे। शिवानंद सेन के नेतृत्व में अद्वैताचार्य आते थे, शिवास पंडित आते, सारे भक्त आते थे। और जाते समय 4 महीने लगभग रहते थे वो लोग, रथ यात्रा के बाद जाते समय हर भक्त महाप्रभु का दर्शन लेके उनकी विदाई लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु सबको आलिंगन देते थे, प्रेम से व्यवहार करते थे, उनके बारे में, उनके घर के बारे में पूछते थे। इस प्रकार से पहले वो नित्यानंद प्रभु को मिलते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते नित्यानंद प्रभु के साथ क्या बातें करते थे कोई नहीं जानता, बहुत ही गुप्त बात होती थी वो। फिर शिवास पंडित, शिवानंद सेन, वासुदेव दत्त, मुकुंद दत्त, सब लोग मिलते थे। और एक गांव था कुलीना ग्राम, उसके भक्त वो आकर चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, कहते हैं अभी आपके बिना हम 8 महीना कैसे रहेंगे, क्या करना चाहिए हमें। तो महाप्रभु कहते हरि नाम करो और वैष्णवों की सेवा करो। वैष्णव कौन है, कुलीना ग्राम के लोग पूछते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले रहा है वो वैष्णव है, चाहे बोलो राम बोलो नरसिंह बोलो कोई भी नाम। फिर अगले साल भक्त आते हैं, फिर से सब लोग मिलते हैं, कुलीना ग्राम के भक्त फिर से जाके मिलते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम लो वैष्णव सेवा करो। वैष्णव कौन है? तो कहते हैं जो निरंतर भगवान का नाम लेते रहता है, भगवान के नाम में उत्सुक अत्यंत रुचि है, ऐसा व्यक्ति वैष्णव है। फिर तीसरे साल फिर से पूछते हैं, फिर से वही आज्ञा, हरि नाम लो वैष्णवों की सेवा करो। वैष्णव कौन है? वैष्णव वो व्यक्ति है जिसको देखकर ही भगवान का नाम अपने मुख में आ जाए, उसको देखकर लोग भगवान का नाम ले। इस प्रकार से महाप्रभु ने एक निम्नतम वैष्णव से लेकर उच्चतम वैष्णव की बात कही और हर समय उनको एक ही आज्ञा दिया, हरि नाम लो वैष्णव सेवा करो। तो हमारा जो युग धर्म है असल में दो पहियों पे चलता है, हरि नाम और वैष्णवों की सेवा। और ये पंढरपुर क्षेत्र जो है वो इस वैष्णव सेवा से ही उत्पन्न हुआ है। इसको भू वैकुंठ कहा जाता है। इसकी कहानी बहुत पुरातन काल से चली आ रही है। एक राजा थे जिनका नाम था राजा मुचकुंद। ये मुचकुंद राजा इतने शक्तिशाली थे कि देव और असुर का जो संग्राम हो रहा था उसमें देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, कैसे इन असुरों का प्रभाव को प्रभाव से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने मुचकुंद राजा को बुलाया कि आप हमारी सहायता करो। मुचकुंद राजा ने अपने बल और पराक्रम से असुरों को परास्त कर दिया। सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने मुचकुंद राजा को पूछा आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तो मुचकुंद राजा हजारों साल युद्ध कर रहे थे और थक गए थे। जब कभी कभी हम लोग बहुत थकते हैं तो घर पर जाकर कोई बोले थोड़ा प्रसाद लो तो प्रसाद लेने की भी इच्छा नहीं, तो पहले सोना चाहते हम लोग। उसी प्रकार से मुचकुंद राजा एक ही चीज होता, मैं कभी सोऊंगा। तो उन्हें देवताओं से कहा कि मैं सोना चाहता हूं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं इतना सोऊं जब तक मेरी इच्छा रहे और कोई मुझे अकाल उठा देगा तो उसको मैं देखते ही वो भस्म हो जाएगा, ऐसे मुझे वरदान दो। तथास्तु। फिर मुचकुंद राजा एक गुफा में जाकर सोने लगे, हजारों साल तक सोए। ये लीला है। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतरित हुए और फिर हम जानते हैं गोकुल वृंदावन में रहने के बाद मथुरा आए। मथुरा में आने के बाद जब कंस का वध हो गया तो कंस के जो ससुर थे जरासंध बहुत क्रोधित हुए, अनेकों बार उन्हें युद्ध के लिए वो मथुरा पर चढ़ाई करके आए, फिर कुछ चले नहीं, हर बार परास्त होते थे। जिस प्रकार से कोई बलशाली हाथी या बलशाली सिंह एक मृग को आसानी से हरा सकता है, उसको बांध सकता है, उसी प्रकार से जरासंध को बांधा जाता था, उसको फिर से छोड़ा जाता था, जा। बहुत दुख होता था उसको कि इस प्रकार से मारते क्यों नहीं मुझे, छोड़ते क्यों हैं, हर समय मारते नहीं है छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान की योजना रहती है। भगवान क्या चाहते, जितने राक्षस है सबको लेके आओ, मैं बार बार कहां जाऊंगा, मुझे बार बार बाहर जाना पड़ेगा, राक्षसों को ढूंढना पड़ेगा, उससे अच्छा है तुम जाओ लेके आओ, फिर मैं एक साथ सबको एक साथ मारूंगा। इस प्रकार से अनेकों बार अनेकों लक्षावधि राक्षसों को लेकर आते थे और मार देते थे श्री कृष्ण भगवान। बहुत साल ऐसे गए, कुछ चली नहीं, फिर उन्होंने एक उनके मित्र काल यवन उनको भेजा। जब काल यवन आने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इसके साथ दूसरी योजना से मारना चाहिए इसको, क्योंकि उसको वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं, उसको वरदान था ये। तो भगवान श्री कृष्ण जल्दी इसके ऊपर सुदर्शन फेंक के फायदा नहीं है, उसके ऊपर बाण मार के फायदा नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भगवान सिर्फ चलने लगे जोर जोर से, और उसके पीछे काल यवन दौड़ने लगा, तो सोचना अभी पकड़ लूंगा, ये डर के भाग रहा है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत लीलया आस्ते आस्ते जा रहे हैं, और ये दौड़ रहा है, हाफ रहा है, लेकिन भगवान आस्ते से जा रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता ऐसे कैसे हो सकता है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में चले गए, वहां पर ये ढूंढने लगा, उस गुफा के अंदर जहां पर मुचकुंद सोया था भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए, और ये भी पीछे पीछे आ गया। और भगवान ने देखा ये सोया हुआ है, तो अपना वस्त्र ऊपरी वस्त्र लेकर उसके शरीर पर डाल दिया और एक कोने में छुप के खड़े हो गए। तो जैसे ये काल यवन आया, उसने सोचा अरे देखो कैसे छुप कर थक कर सो गया है, छुप रहा है, बहुत उसको बहुत गर्व हुआ अपने आप को, देखो मुझसे कैसे डर गया है, जोर से लात मारे, बोला उठ। क्या हो गया? मुचकुंद ने चद्दर खोली, उसको देखा, एक ही क्षण में पाउडर बिल्कुल राख हो गई उसकी। और उसके बाद में वो देखने में कौन था, कौन जल गया, उसको तो पता भी नहीं चला, क्योंकि उसको वरदान ही था इस प्रकार से, कोई भी उठा लेगा तो उसको तुरंत भस्म कर सकता है वो। और उसने आसपास देखा कि किसका कार्य है, ऐसे किसने योजना बनाई कि ये व्यक्ति भस्म हो सकता है। फिर देखा कोने में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, बहुत मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, और मुचकुंद सोच रहे कौन है ये। फिर उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को पूछा जाके कौन है, लेकिन जब पूछा तो उनको लगा नहीं नहीं मैं निम्न हूं, ये महान दिखता है। तो उसने फिर बताया कि मैं मुचकुंद हूं, आप कौन है। जैसे हम व्यवहार में देखते हैं किसी बड़े व्यक्ति को हम लोग आप कौन हो ऐसे नहीं पूछते, पहले हम अपना नाम बताते ना कि मैं ये हूं, आपका परिचय। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं आपका ही आराध्य देव हूं। और मुचकुंद इतने प्रसन्न हो गए उनके दर्शन से, अपने आंखों से भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य इसको पी रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। फिर भगवान को बोलते हैं, जब भगवान ने पूछा क्या चाहिए आपको, बोले इसी प्रकार से मेरे सामने खड़े रहो, बस ऐसे ही खड़े रहो, हिलना नहीं, मैं देखते रहना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे मुझे तो बहुत काम है, पीछे जाना है, बहुत सब लोग राह देख रहे हैं, और राक्षसों को मारना है, मेरा अवतार कार्य है, लेकिन अगले जन्म में मैं ऐसा आपको ये वरदान स्वीकार करूंगा कि आपके सामने मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा। यही राजा मुचकुंद कुछ समय के बाद में एक भक्त के रूप में जन्म लेता है, जिसका नाम था पुंडलिक। ये पंढरपुर में, पंढरपुर को तभी पंढरपुर नहीं कहते थे, उसका नाम था लोहदंड क्षेत्र, क्योंकि लोहदंड से एक दिंडिर नाम के राक्षस का वध किया गया था, तो उसको दिंडिरवन भी कहते हैं, लोहदंड क्षेत्र भी कहते हैं। उस लोहदंड क्षेत्र में मुक्ताबाई और जानुदेव नाम के दो पति पत्नी अत्यंत सुशील सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव रहते थे, और उनके घर में पुंडलिक का जन्म हुआ। दिखने में अत्यंत सुंदर, बलशाली, अत्यंत सुंदर होने के कारण पुंडलिक थोड़ा सा धर्म से हट गया, आस्ते आस्ते अपने माता पिता को बहुत उठपटांग बातें कहने लगा, कभी सुनता नहीं था, अवज्ञा करता था। माता पिता सोच रहे थे कि ऐसा पुत्र ना होता तो अच्छा होता। विवाह कर लिया तो पत्नी का सुनता था, माता पिता को कभी सेवा नहीं करता था। पत्नी भी उसी प्रकार से मिली थी। ये घर घर की कहानी है, लेकिन पुंडलिक के घर में भी थी ये। पुंडलिक को माता पिता ने आखिर में एक बार पूछा कि देखो, हमने तो आपने कुछ दिया तो नहीं हमको, सेवा विवाह तो की नहीं कुछ, लेकिन हम कम से कम काशी की यात्रा करना चाहते हैं, क्या हम आपके साथ जा सकते, क्या आप लेके जा सकते हैं? बोले मुझे समय नहीं है, आप जाना है तो जाओ। अभी उस समय ऐसे कोई ऑगस्ट क्रांति या पश्चिम में ऐसे कुछ था नहीं, सबको चल के ही जाना था, चल के गाड़ी घोड़ा, उससे ज्यादा नहीं। और काशी जाना मतलब बहुत बार जो इस दक्षिण प्रदेश से काशी जाते थे, जब कोई व्यक्ति काशी जाता था तो बहुत लोग उसका क्रियाकर्म कर चुके होते थे। बोला ये तो कभी आएगा पता नहीं, आएगा तभी उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आएगा इसका जरूरी नहीं है, गया वो गया। ऐसे ही बद्रीनाथ गए, काशी गए तो वापस आएंगे, इसका कोई शाश्वत नहीं था। तो ये जाने लगे पैदल। कुछ समय के बाद पत्नी से कहने से वो सोच रहे वो काशी जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो पुंडलिक ने चलो देख लेते हैं काशी भी क्या है। तो एक उसने घोड़ा ले लिया और घोड़े के ऊपर पति पत्नी जाने लगे। बहुत दिन जाने के बाद उनको रास्ते में माता पिता भी मिले। तो माता पिता ने कहा कि भाई हम तो थक गए हैं, आप घोड़े पे हो, कम से कम हमारा सामान लो। तो उसने देखा तक नहीं, बोला नहीं तुम आने का वैसे आ जाओ, मुझे जल्दी है। घोड़े पर सवार होकर पति पत्नी चले गए। कुछ समय के बाद रात हो गई तो एक कुकुटाश्रम नाम की जगह थी, वहां पर एक महान संत रहते थे, कुकुट स्वामी। इतने सदाचारी थे, इतने शुद्ध थे, हर समय वैष्णवों की सेवा में लगे रहते थे, साधु संतों की सेवा, ऋषि मुनि की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौर गरीब की सेवा, हर व्यक्ति हर प्राणी मात्र की सेवा, यही उनका धर्म था। और उसके कारण उनके पास ऐसा बल आ गया था कि हर रात को गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां अपने निजी स्वरूप में वहां पर आकर उनके आश्रम की साफ सफाई करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे वो आश्रम की साफ सफाई कर, जो जो गंदगी, जो जो पापों का मैल दिन भर में लोगों ने डाला है, उससे वो कुरूप हो जाते थे। और सवेरे सवेरे जब तक साफ सफाई हो जाते, फिर से वो अपना सुंदर स्वरूप को प्राप्त करते थे। तो पुंडलिक उस आश्रम में पहुंचा और उसने कुकुट स्वामी को पूछा कि मैं रह सकता हूं? बोला कोई भी रह सकता है। उन्होंने पूछा यहां काशी कितनी दूर है यहां से? तो स्वामी जी ने कहा मैं तो काशी कभी गया ही नहीं, आज तक मैं काशी गया नहीं, तो मैं कैसे जानूं? इस प्रकार से वो रात के विश्राम के लिए चले गए। कुछ देर के बाद माता पिता भी उसी आश्रम में पहुंच गए और सोने लगे। और रात को अचानक जहां पर ये सोया था पुंडलिक, उसने देखा तीन अत्यंत कुरूप स्त्रियां वहां पर आई। डर गया, कौन है ये लोग? और अचानक वो साफ सफाई करने लगे। तो इसने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आपके उत्तर का, प्रश्नों का उत्तर देने की हमें जरूरत है। आप इतने नीच और पापी हो, अपने माता पिता का सेवा नहीं करते जो ब्राह्मण वैष्णव है। हम तो कुकुट स्वामी के योग बल से हमारे अपने आप को पवित्र करने के लिए आए हैं, आपको उत्तर देने के लिए नहीं आए। तो इसने सोचा कि कोई तो महान व्यक्ति लगते हैं, सोचने लगा। और फिर उसने देखा आस्ते आस्ते जैसे जैसे झाड़ू मार रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ये स्त्रियां सुंदर हो रही है, उनका तेज वापस आ रहा है, अत्यंत प्रफुल्लित चेहरा हो रहा है। और फिर देखा कि सृष्टि में सबसे सुंदर व्यक्तियां ऐसे हो ही नहीं सकती, इतनी सुंदर दिखने लगी। फिर से उसने पूछा, आप लोग कौन है? मैं गंगा हूं, ये यमुना है, ये सरस्वती है, आप यहां कैसे आते हैं? क्योंकि कुकुट स्वामी वैष्णवों की सेवा में, सारे जीवों की सेवा में इस प्रकार से लगे हैं, उनका बल इतना है कि हमें जो गंदगी प्राप्त होती है, हम जो कुरूपता आती है दिन भर में, उससे उसका क्षालन करने के लिए, उससे पवित्र बनने के लिए हम उनकी सेवा करते हैं। तुरंत पुंडलिक के हृदय में ज्ञान जागृत हो गया, वो चरणों पर गिर गया और कहने लगा, मुझ पर कृपा करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने ये जाना नहीं कि मेरे माता पिता ये भी वैष्णव है, मैंने इनकी कभी सेवा नहीं की, आज से मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं, मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूं। और इस प्रकार से पुंडलिक का वहां से भक्ति का प्रारंभ हो गया। कहां से? वैष्णव सेवा से। अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काशी की यात्रा करवाई, फिर से लेके आए और वहां पर दिंडिर वन में फिर से रहने लगे और अत्यंत सुशील और सदाचारी बने। और पुंडलिक प्रसिद्ध हो गए कुछ ही दिनों में, क्योंकि असल में पहले की भक्ति है ही उनकी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण साहब कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी भी आप अगर प्रगति कर रहे थे इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, वो वैसे के वैसे आपके साथ रहती है। आप जब फिर से शुरू करेंगे वहीं से आप आगे जाएंगे। तो कभी कभी हम देखते हैं कोई भक्त दूसरे भक्त को लेके आता है और ये भक्त वहीं का वहीं रहता है, लेकिन ये दूसरा भक्त जो नया नया आया उसके बाद में वो बहुत आगे चला जाता है। क्यों ऐसे होता है? कि उसकी पुरानी पूंजी है, उसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है। तो पुंडरिक जो कि पुराने पूर्व जन्म में महाराज मुचुकुंद थे, वो अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे भक्त बन गए। लोग दूर दूर से उनके भक्ति की कथा सुनते थे। और एक बार रुक्मिणी जी किस कारण क्रोध में आ गई, द्वारकाधीश से रूठ गई और उसने बोला कि मैं भी अभी तपश्चर्या करने के लिए जा रही हूं। वो आ गई दिंडिर वन में तपश्चर्या करने के लिए। तो भगवान ढूंढते ढूंढते आने लगे, रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी कहाँ गई। तो पहुंच गए दिंडिर वन, लोहदंड क्षेत्र में। फिर उन्होंने सोचा, अरे यहां पर मेरा भक्त रहता है पुंडरिक, उसको मिलके आते हैं। तो भगवान मिलने के लिए गए। पुंडरिक तभी क्या कर रहे थे? पुंडरिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, खास करके माता के चरण को धो रहे थे, मसाज कर रहे थे और ऐसे बैठे थे। पीछे दरवाजा था और भगवान श्री कृष्ण द्वार पर आ गए, बोलने, पुंडरिक हे मित्र मैं आ गया हूं। तो पुंडरिक ने पीछे बढ़कर देखा, अरे भगवान आ गए। अत्यंत सुंदर वर्णन पद्म पुराण में किया है कि उनके कैसे भुजाएं थी, कैसे उनकी गर्दन थी शंख की तरह, उनका मुकुट, उनके कुंडल, सब कुछ अत्यंत सुंदर पीतांबर, उसका सुंदर वर्णन किया हुआ है जो हम नहीं कर सकते। उस सुंदरता को देखकर भी पुंडरिक ने क्या कहा, भगवान आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप रुकिए, अभी मेरा सेवा खत्म नहीं हुआ है। फिर से सेवा करने लगे और भगवान पीछे खड़े हैं। तो पुंडरिक ने सोचा, ऐसे बराबर नहीं है, भगवान मेरे द्वार पर आए, उनके लिए कुछ बैठने के लिए, खड़े रहने कुछ तो देना चाहिए, आसन तो देना चाहिए। तो कुछ भी नहीं था उधर, तो एक ईंट थी, उस ईंट को उठा लिया और फेंक दिया भगवान के पास, भगवान इसके ऊपर खड़े हो जाइए, अभी कुछ ही समय में आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। तो भगवान ईंट के ऊपर, मराठी में वीट बोलते हैं उसको, वीट के ऊपर खड़े हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया विट्ठल। और भगवान ऐसे ही प्रतीक्षा में खड़े हैं, भगवान भक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएगा। ऐसे कहते हैं, वो ईंट भी जो है वो भी कोई साधारण ईंट नहीं है, एक बार इंद्र ने एक असुर को मारा था, रुद्रासुर नाम के, वो अपना फेमस रुद्रासुर नहीं है, ये दूसरा दूसरा है। ये रुद्रासुर बहुत दिन तक युद्ध करने के बाद भी परास्त नहीं हुआ, लेकिन वो भी इंद्र को परास्त नहीं कर सका, इंद्र भी उसको परास्त नहीं कर सका। तो उसने और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो भगवान का ध्यान करने लगा, और ध्यानस्थ अवस्था में जब बैठा था तब इंद्र ने अपने एक सेवक को भेज के उसका उसको मार डाला। तो मरते समय उसने शाप दिया इंद्र को कि मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था, जो भी कारण होगा, लेकिन मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, उस अवस्था में तुमने मुझे मारा है, इसलिए मेरा शाप आपको लगेगा, आप एक पत्थर बन के रहोगे, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बन के रहोगे। और वही ईट जो है वो इंद्र है, और भगवान के जैसे चरण स्पर्श हो गए वो ईट का उद्धार हो गया और इंद्र अपने फिर से स्वरूप को प्राप्त हुए। इस प्रकार से भगवान विट्ठल वहां पर खड़े रहे। कुछ समय के बाद में माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडरिक ने भगवान का दर्शन लिया, उनकी स्तुति की, बहुत आनंद से उनके सामने नाचने लगा, गाने लगा, और फिर भगवान से कहा, भगवान ने प्रसन्न होकर बोला, बोलो अभी क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो। तभी पुंडरिक ने कहा कि आप जैसे खड़े हो वैसे ही रहिए, यहां से जाना नहीं, इसलिए जो मुचकुंद मांग रहा था उसको इस अवतार में, इस अवतार में मतलब मुचकुंद के अवतार में, भगवान तो वही है द्वारकाधीश कृष्ण, उन्होंने उसको पूर्ण कर दिया, ठीक है मैं आपके लिए ऐसे खड़ा रहूंगा, और आप ऐसे खड़े रह के जैसे आप मुझे दर्शन देके पवित्र कर रहे हो, वैसे अनेकों लोग यहां पर आएंगे आपका दर्शन करें, सबको दर्शन का प्राप्त होना चाहिए, इसलिए पंढरपुर ऐसा एक ही क्षेत्र है जहां पर आप कोई भी जाति से हो, आप कितने भी नीच जन्म से हो, हर व्यक्ति, ऐसा कोई और मंदिर नहीं, जाकर भगवान के चरणों को डायरेक्ट स्पर्श कर सकता है। आज भी लाखों लोग उस एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन लाइन लगाकर, कभी 48 घंटा कभी 72 घंटा लाइन लगा के खड़े रहते हैं, और उसके बाद में 2 सेकंड के लिए भगवान के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं। एक ही भगवान है जो हर व्यक्ति को उस दिन मिलते हैं, थकते नहीं। असल में हमने देखा, हमारे एक मित्र हैं, बहुत पांडुरंग के बहुत अच्छे भक्त हैं, वो हमें लेके गए थे भगवान का सवेरा का काकड़ आरती बोलते, बहुत अत्यंत शुभ ऐसा दर्शन, भगवान का दर्शन हमेशा शुभ होता है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन, उसके लिए लेके गए थे, और बोल रहे थे कि देखो कल एकादशी थी, आज देखेंगे भगवान इतने लोगों को दर्शन दे देकर खड़े रह रहकर, उसने सोए नहीं है, आप देखें कितने थके हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि सही में भगवान ऐसे थके हुए नजर आते हैं। तो भगवान वहां पर खड़े रहकर, पुंडरिक ने वरदान मांगा कि आप इसी प्रकार से खड़े रहकर सबको आलिंगन दीजिए और सबको दर्शन देते रहिए अनंत काल तक, और ये भगवान ने स्वीकार किया। और इसीलिए आज भी हम देखते हैं ये पंढरपुर, इसका और एक नाम पड़ा है पुंडरिक क्षेत्र, पुंडरिक के नाम के ऊपर उनका नाम पड़ा पुंडरिक क्षेत्र। तो पुंडरिक क्षेत्र में इसको आचार्य नाद नाद ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। वैसे अनेकों क्षेत्र होते हैं, जैसे बालाजी तिरुपति जी के जो बालाजी है उनको कांचन क्षेत्र कहा जाता है तीर्थ क्षेत्रों में। क्यों कांचन क्षेत्र? कांचन है सोना, वहां पर इतना सोना आता है डेली कि आप आज भी जाके देखेंगे पीछे उनका कांच के पीछे सैकड़ों लोग रहते हैं पैसा गिनने के लिए और सोना गिनने के लिए, डेली इतना पैसा आते ही रहता है कांचन क्षेत्र। जगन्नाथपुरी को अन्न क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि अन्न की कभी कमी नहीं होती, आप कभी भी जाएंगे अन्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कोई भी वहां पर भूखा नहीं रह सकता। उसी प्रकार से पंढरपुर को नाद ब्रह्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि पंढरपुर में आज तक कभी कोई वाद विवाद चर्चा वर्चा कुछ नहीं हुई। जो भी पंथ होगा आपका, आप मायावादी हो या ये वादी हो या वो वादी हो, हर व्यक्ति जो वहां पर आएगा केवल विट्ठल का नाम गाएगा बस, और कुछ कोई करता ही नहीं। ये जो पंढरपुर की वारी होती है आषाढ़ एकादशी के दिन और फिर वापस कार्तिक के एकादशी के दिन, 10 लाख से ऊपर लोग आते हैं। कोई कोई लोग तो दर्शन ले भी नहीं पाते हैं, वो केवल वो सुदर्शन चक्र जो है मंदिर के ऊपर उसका दर्शन लेकर फिर से चले जाते हैं। और कहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। कोई 15 दिन चलकर आया है, कोई 20 दिन चलकर आया है, बीमार होते हैं, लेकिन जैसे वो चक्र को देखते हैं, भगवान को देख के रहते हैं, अत्यंत प्रसन्नता से फिर अगले साल आते हैं। तो पंढरपुर का क्षेत्र जो है इस वैष्णव सेवा के आधार पर बना है, और ये वैष्णव सेवा ये हमारे भक्तों के लिए सबसे बड़ी भाग्य की चीज है। हमें बहुत भाग्यवान समझना चाहिए अपने आप के लिए कि हमें वैष्णवों की सेवा मिली, हमें हरिनाम भी मिला, वैष्णवों की सेवा भी मिली। ये वैष्णव सेवा जो है, रामानुजाचार्य जो कि शिव संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं, इस रामानुज संप्रदाय में वैष्णव सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने वहीं से वैष्णव सेवा को स्वीकार किया, और उस संप्रदाय में इस वैष्णव सेवा के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि अत्यंत सुंदर कथाएं उसमें हैं, अनेकों मॉडल हमें मिलते हैं उसमें किस प्रकार से वैष्णव सेवा होनी चाहिए। हमारे शास्त्र जो है वो अनेकों मॉडलों से भरे हुए हैं। हमारा जो जीवन है वो कैसे चलना चाहिए, महाजनो येन गता सपन्था। हम लोग भक्ति का मार्ग अत्यंत सुलभ है, क्यों, क्योंकि आपको कुछ नया सीखना नहीं है। जिस मार्ग से महाजन गए हैं, महान भक्त गए हैं, उसी मार्ग का पदक्रमण करना है। तो रामानुजाचार्य के इस संप्रदाय में 2 कथाएं छोटी छोटी बता देंगे आपको, आनंद आएगा आपको जरूर। रामानुजाचार्य के पहले ही एक नीला नाम का डाकू था, खूंखार डाकू था। इतना खूंखार था कि राजा के जो सिपाही थे वो भी डरते थे उससे, सारा सैन्य डरता था। और जितने भी कंप्लेंट राजा के पे जाते थे, राजा अनेकों सैनिकों को भेजता था, जाओ पकड़ के लेके आओ, वो अकेला ही सबको परास्त कर देता था। एक बार ऐसे हुआ कि राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी, उसने सबको परास्त किया, इतना शक्तिशाली था। और उसके 3-4 मित्र भी थे, वो इतनी छोटी टोली थी 4-5 लोगों की, लेकिन राजा उनके सामने परास्त हो गया। तो राजा ने एक उपाय सोचा कि चलो ये तो किसका सुनने वाला नहीं है, मैं तो राजा हूं लेकिन उसके सामने हार गया हूं, एक छोटा सा व्यक्ति जंगलों में रहता है। तो उसने एक अपने मंत्रियों के द्वारा इस डाकू को एक मैसेज भिजवाया, बोले आप हमारे टैक्स कलेक्टर बन जाओ। हाँ, उसको टैक्स कलेक्टर बना दिया। तो दूसरे साल से राजा की तिजोरी ऐसे भर गई कि वो कोई टैक्स चुरा नहीं सकता था उसके सामने। वो जैसे गांव में आता था, सब लोग इतना टैक्स होगा तो उससे डबल टैक्स दे देते थे उसको, ले और जा जल्दी। सब लोग डरने लगे, तो राजा के पूरे भंडार भर गए, राजा खुश हो गया। लेकिन प्रजा बीच बीच में बोलती, कैसे कैसे टैक्स कलेक्टर रखे आपने। फिर नीला डाकू इस प्रकार से गांव में से अपने डाकू की तरह ही चलता था, उसने कभी ये सोचा नहीं कि मैं राजा का कोई व्यक्ति हूं, उसके लिए राजा कुछ था नहीं। लेकिन क्योंकि राजा ने बोला है तो ऑफिशियली, पहले अनऑफिशियली कर रहा था, ऑफिशियली कर रहा। तो एक दिन जाते जाते अचानक उसके सर के ऊपर किसी घर से एक गेंद आकर गिर गई जोर से। तो उसने ऊपर देखा, अरे किसने गेंद डाली, किसकी ये हिम्मत कि नीला के ऊपर कोई किस प्रकार के गेंद डाले। और ऊपर उसने जब देखा तो एक सुंदर युवती वहां पर खड़ी थी और बोले मैंने गेंद वापस दो। उसको कोई पता नहीं ये नीला डाकू है, बोले गेंद को वापस दो। तो नीला डाकू ने गेंद वापस दे दी और देखते ही रह गया। और अपने मित्रों से कहा जाके पूछ के आ जाओ किसकी लड़की है। तो एक वृद्ध ब्राह्मण सामने आया, वो डरने लगा कि क्या होने वाला है अब। तो नीला ने बोला कि देखो आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो ये तो ना तो बोल नहीं सकता, उसको मालूम था ये नीला डाकू है। उसने कहा कि ठीक है आप अपनी मेरी पुत्री से ही पूछ लो, अगर वो चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो पुत्री को बुलवाया गया। पुत्री ने कहा आप तो दिखते तो शक्तिशाली हो, लेकिन मैं शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना चाहूंगी अगर वो वैष्णव है तो। मैंने मेरे हृदय में ये बांध लिया है कि मैं वैष्णव के साथ ही शादी करूंगी। तो नीला ने कहा कोई बात नहीं, वैष्णव बन जाऊंगा, उसमें क्या है। और तुरंत ढूंढने लगा कि वैष्णव क्या है। तो उसने देखा मंदिरों में वैष्णव गा रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाच रहे गा रहे कीर्तन कर रहे हैं, आनंद में है। बोले ये वैष्णव है क्या। कोई बात नहीं, उसमें से एक को पकड़ लिया, बोला चल मुझे वैष्णव बना भी। तो वो सोचना भी इसको वैष्णव कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन बोले वैष्णव बना जल्दी। अभी उसने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। उसने अपना जो फूलों की माला थी उसके गले में डाल दी, वहां से चंदन लिया, उसके सर के ऊपर तिलक कर दिया, इधर तिलक लगा दिया, यहां पर तिलक, यहां पर तिलक, और बोला जाओ वैष्णव बन गए तुम, जाओ। छुटकारा हो गया। ये पहुंच गया उस लड़की के पास फिर से, देखो मैं वैष्णव बन के आ गया। तो उसने कहा बहुत सुंदर बात कही, बोला ये सब चिन्ह लगाकर कोई वैष्णव नहीं मानता है, चिन्ह लगाकर वैष्णव नहीं बना जा सकता, वैष्णव यानी हृदय की बात है, आप हृदय से वैष्णव बनो। बोला कैसे बना सकते हो, मैंने जो चाहे वो कर दिया, अभी आप ही बताओ कैसे होना चाहिए। तो ठीक है एक साल तक आपके पास पैसा बहुत है, एक साल तक हर दिन 1000 वैष्णवों को प्रसाद खिलाओ और उनका चरणामृत पियो। तो कोई बात नहीं, वो इतना बिल्कुल उसके ऊपर लुब्ध था कि बोला कोई बात नहीं। उसने तुरंत अपने मित्रों को भेजा जाओ 1000 वैष्णवों को लेके आओ। तो पकड़ पकड़ के यहां वहां से वैष्णवों को लेके आते थे और सब लोग जानते कहां जाना है, नीला के घर, बाप रे, सब लोग डर गए थे। लेकिन लाइन से बैठा के सबको खाओ, पर नहीं अभी अभी खा के आया, खाओ, खाना पड़ता था। और नीला स्वयं उनको खिलाता था और फिर ऐसे पैर पकड़कर उनके पैरों को धोता, बोले क्या कर रहे हो, बोला पैर को धो रहा हूं दिखता नहीं, और फिर धो के पी जाता था। अभी ऐसे कुछ दिन चले गए और वैष्णव सेवा का प्रताप ऐसा है कि कुछ समय के बाद उसको पता चला कि मैं जो कर रहा हूं सही नहीं, सही तरीके से नहीं कर रहा हूं, सही चीज कर रहा हूं लेकिन सही तरीके, बहुत नम्र हो गया। फिर प्रेम से लोगों को बुलाने लगा, फिर प्रेम से लोगों को खिलाने लगा, फिर प्रेम से उनकी अनुमति से उनके चरणों को धोकर पानी पीने लगा। और आस्ते आस्ते वो भूल गया कि वो किस लिए इसने ये सब कार्य शुरू किया था, भूल गया, उस लड़की को भी भूल गया, और केवल उसके जीवन में एक ही लक्ष्य रहा, वैष्णवों की सेवा। तो अभी 1000 के जगह वो 2000 3000 हजारों लोगों को खिलाता था, उनके साथ नाचता था गाता था। कुछ समय के बाद पता चला अरे तिजोरी खाली हो गई, पैसे नहीं रहे। फिर उसने सोचा अरे राजा को ये टैक्स देना बाकी है, ये राजा का हिस्सा भी उसने उसी में वापर लिया। तो राजा सोच रहा है इस साल कुछ आया नहीं पैसा, तो उसने मैसेज भिजवाया कि भाई हमारा पैसा कहाँ है, बोला पैसा खत्म हो गया। तो राजा ने सेना को भेजा, बोले जाओ उसको गिरफ्तार करके लाओ। तो नीला था, उसने आज तक वैष्णव बन गया, लेकिन उसकी तो शक्ति थी, उसने सारी सेना को परास्त कर दिया। फिर राजा स्वयं अपनी चतुरंगी सेना को लेकर आया, बोला ठीक है इसको देखते हैं आज, पूरे फोर्स से आ गया। और उस फोर्स को भी नीला ने कुछ ही समय में परास्त, बहुत शक्ति थी उसके पास, और फिर राजा को भी गिरा दिया घोड़े से। और राजा को कहा देखो तुम्हारे धन से मैंने वैष्णवों की सेवा की है, इसलिए तुमको छोड़ देता हूं, जाओ। उस समय किसी वैष्णव ने ये बात देखी और वैष्णव ने कहा, करे नीला तुम ये क्या कर रहे हो, राजा भगवान का, ये भगवान का ही स्वरूप है, उसको नरदेव कहा जाता है, उसको भूदेव कहा जाता है, वो देवता है आपके लिए, वो भगवान विष्णु है आपके लिए, आप उसकी संपत्ति ले चुके हो, उसके आप गुनेगार हो और उसके ऊपर उसको ही दंड दे रहे हो, उसको उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। और इस प्रकार से जब वैष्णव ने कहा तो नीला तुरंत चौंक गया, अरे वैष्णव मेरे से नाराज हो गया। उसने राजा से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका सारा धन आपको मिल जाएगा, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। और भगवान की योजना से ही उसको बहुत सारा गुप्त धन मिला, जो राजा को उसने वापस दे दिया। राजा ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मैं जान गया हूं तुम्हारी वजह से, मैं ये देख गया, समझ गया हूं कि वैष्णव कौन है, वैष्णव की महानता क्या है। जिस तुल नीला को मैं अपनी सारी सेना के बावजूद परास्त नहीं कर सका, उसको एक वैष्णव के दो वाक्यों ने उसको परास्त कर दिया। मैं भी वैष्णव बनना चाहता हूं, ये सारा धन ले लो और वैष्णव सेवा करता रहो। फिर वो धन भी खत्म हो गया, फिर से नीला अपने पुरानी यादें उसको फिर से लूटने लगा, लोगों को, धनी लोगों को। फिर एक दिन भगवान स्वयं उसके सामने आ गए, एक सेठ का रूप लेके। जैसे हम राजस्थान में जाएंगे, वहां पर एक भगवान की मूर्ति है, उसका नाम है सेठ सावलिया, आपने सुना है, सेठ सावलिया, मेरे सावला सेठ। वो भी नरसिंह मेहता नाम के भक्त हैं, उनकी पुत्री के बचाव के लिए एक सेठ बनकर आए थे। उसी प्रकार से यहां पर नीला के बचाव के लिए भगवान सेठ बनकर आए और बहुत धन उनके दिख ही रहा था कि वो धन के साथ जा रहे हैं, उनके शरीर के ऊपर धन लतपत है, उनकी पत्नी के शरीर के ऊपर धन लतपत है। और जब ही वो जा रहे थे तो नीला के लोगों ने बताया कि बहुत धन आ रहा है, बोले चलो टूट पड़ो, वापस हमें किसी को लूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा धन लूट लिया और फिर भगवान का स्वयं का सब धन जो है वो निकालने लगे। अभी सारा धन निकाल लिया, सारे जो जवाहरात थे निकालने के बाद में लक्ष्मी जी के पैरों में, उसके अंगूठे में एक सुंदर अंगूठी थी, उसको वो निकालना चाहता था। अभी वो निकल नहीं रहे थे हाथ से, तो उसको मुख के वो ऐसा तोड़, तो मुंह लगा दिया उसने। और जैसे ही अपना मुख लक्ष्मी जी के चरणों में लगा, उसको तुरंत साक्षात्कार, ये तो लक्ष्मी और नारायण है। और उसी स्वरूप में नीला ने उनको देखा, लक्ष्मी नारायण को, तो प्रणाम किया, क्षमा याचना की, उसके सामने बहुत स्तुति की। और भगवान ने कहा, नीला मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, आपके जैसे वैष्णवों की सेवा किसने इतिहास में नहीं की है। तो उसने क्या किया, भगवान को प्रार्थना की, नमस्कार किया और अपना मुख मोड़कर फिर अपना सारा धन निकल लिया, उसको गट्ठे में बांधा और चलने लगा। तो भगवान कह रहे, अरे ये क्या कर रहा है तू, मेरा धन, मेरे धनी तुझे दर्शन भी दिया और मेरा धन लेके तू जा रहा है। तो नीला ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करे, मैं वैष्णवों की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। उस समय से उस संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में वैष्णव सेवा सर्वोत्तम बन गई। और फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य, अभी 2:05 हुए हैं, कितना समय बाकी है जी, लोकाध्यक्ष प्रभु कितने समय तक बोल सकते हैं, हम 2:30 तक, अच्छा बहुत समय, कोई बात। तो रामानुजाचार्य ये जब श्रीरंगम में रहते थे, रंगनाथ के मंदिर में, तो उन्होंने 3 एक सहस्त्र गीति नाम का एक ग्रंथ है उसका पठन किया। उसका सारा जो सारांश है, उसके जो सिद्धांत है, अपने भक्तों को समझाए। और 3 ऐसे होने के बाद में वो सोचने लगे, अभी मुझे यात्रा करना चाहिए। तो श्री शैल की यात्रा करने के लिए अपने भक्तों के साथ निकल गए। एक रात देहिला नाम के गांव में रहे, फिर अगले गांव अगले रात में अष्ट सहस्त्र नाम के गांव में रहे, और वहां पर अष्ट सहस्त्र में उनके दो शिष्य रहते थे। एक बहुत धनी था जिसका नाम यज्ञेश, और दूसरा बहुत गरीब था जिसका नाम था वरदाचार्य। तो उन्होंने अपने दो भक्तों को चुना, कहा जाके यज्ञेश को बोलो कि आपके घर में हम प्रसाद प्राप्त करने के लिए दोपहर को आएंगे। तो जैसे ये भक्त गए, यज्ञेश को बताया कि गुरु महाराज आए हैं और आपके घर में प्रसाद लेना चाहते हैं, तो यज्ञेश इतना प्रसन्न हो गया कि तुरंत उसके तो बहुत नौकर जाकर सबको बुलाया, आओ आओ ये करो, वहां उसको ऐसे सजाओ, यहां पर ऐसे सुगंधी पानी रखो, ये करो, ये व्यंजन बनाओ, बहुत बिजी हो गया। कुछ समय के बाद में ये दोनों भक्त रामानुजाचार्य के पास आ गए, और रामानुजाचार्य ने पूछा कि क्या यज्ञेश को बता दिया? और हाँ बता दिया। तो क्या कहा उसने आपसे, आपको कुछ पानी वानी पिलाया कि नहीं, आपका कुछ स्वागत किया कि नहीं? बोले नहीं, वो तो इतना उत्साहित हो गया कि वो तो भूल गया कि हम थे वहां पर, हमें देखा भी नहीं उसने, हम तो ऐसे ही चले आए। तो रामानुजाचार्य, क्योंकि वो आचार्य हैं, अपने आचार्य से आचरण से, आचार्य का मतलब है जो आचरण से दूसरों को सिखाते हैं, उन्होंने तुरंत कहा वहां हम नहीं जाएंगे, आप अभी वरदाचार्य के घर में जाओ, उनको बोलो हम उनके घर में प्रसाद के लिए आ रहे हैं। जबकि वरदाचार्य बिल्कुल गरीब से गरीब ब्राह्मण थे, उनके घर में कोई बैठने के लिए भी स्थान नहीं था, जमीन, घर में कोई अन्न नहीं था, हर दिन माधुकरी कर जो भी अन्न मिलता था उसी में पति पत्नी निर्वाह कर लेते, उनकी पत्नी का नाम तो लक्ष्मी। तो जैसे उनको पता चला लक्ष्मी को, क्योंकि वरदाचार्य तो बाहर निकल चुके थे कुछ लाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, लक्ष्मी को जब पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले उनको बैठा, बैठे 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 आसन दे दिया, छोटा सा पानी पिलाया, कुछ फल थे वो दे दिए, और कहे कि आप जाइए गुरु महाराज को लेके आइए, यहाँ बाजू में एक तालाब है, वहां पर स्नान करिए, और स्नान करके सब लोग यहाँ पर आ जाए तब तक मैं कुछ बना के रखती हूँ। फिर मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कुछ तो रहने दीजिए मेरे घर में। घर में जाकर किचन में देखा, हर बर्तन को खोलकर देखा, एक भी दाना नहीं था। लक्ष्मी अत्यंत सुंदर थी। उसी गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था, धनवान व्यक्ति, वो हमेशा लक्ष्मी के ऊपर बुरी नजर रखता था। बार बार उसने अपने जो दासियां हैं उनके माध्यम से मैसेज भिजवाता था लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मी के पास, कि आप आ जाओ मेरे साथ रहो तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। उसने बहुत बार उसको ठुकरा दिया था, लेकिन आज उसने सोचा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, मेरे पति में घर में नहीं है, और वो लाएंगे तो कितना लाएंगे, थोड़ा सा चावल लाएंगे, मैं मेरे गुरु की और जितने वैष्णव की सेवा कैसे करूं। तुरंत कुछ निर्णय किया, पिछले दरवाजे से निकल गई, उस सेठ के पास गई, वो कही कि आज शाम को मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन पहले अभी मेरे घर में सर्वोत्कृष्ट ऐसे भोग की सामग्री भेज दीजिए। तो खुश हो गया, उसने तो आशा छोड़ दी थी, आज बोला देखो अचानक मेरा भाग्य निकल गया। उसने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन सब कुछ भेज दिया लक्ष्मी के घर में, और लक्ष्मी ने बहुत पकवान बनाए, सुंदर लव फिश बनाया। और रामानुजाचार्य जब आए सारे भक्तों के साथ, वो भी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा प्रसाद इस झोपड़ी में, दंग रह गए। उसी समय हाफते हाफते वरदाचार्य वहां पर पहुंचे और देखा कि ऐसा प्रसाद प्राप्त कर रहे जो उसने कभी देखा नहीं आज तक। वो सोचने लगे कैसे है ये, क्या योजना है, जरूर कोई चमत्कार है। अंदर जाके पूछे पत्नी को कि लक्ष्मी ये सब क्या है, ये सब कहां से आया, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी ने अपना सर झुका लिया, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मैंने वो कार्य किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे गुरु महाराज, हमारे सारे जो वैष्णव हैं, इतने सारे भक्तों को मैं नाराज नहीं करना चाहूँ, उनकी सेवा मेरा आद्य कर्तव्य है, इसलिए मैंने उस सेठ को जाकर हाँ बोल दिया है। अभी उस पति का, उसकी मनोवृत्ति क्या थी, वो भी महान भक्त था, वो आनंद से नाचने लगा, बोलो क्या पत्नी मिली मुझे जो धर्म के सिद्धांत को इस तरह जानती है कि आपने आज आपने मुझे सिखाया है। धर्म के अनुसार पति गुरु होता है, लेकिन आज आप मेरी गुरु बन गई हो, आपने ऐसा कार्य किया है जिसको कोई तोड़ नहीं है, आज से मैं आपका दास बन गया हूं। उसने तुरंत ही बहुत आनंद से पत्नी को रामानुज सारे के सामने लेके गए और सारी कथा सुना दी कि ऐसे ऐसे हुआ है। अभी रामानुजाचार्य, इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले प्रसाद खाओ। उनको दोनों को प्रसाद खिला दिया। प्रसाद के बाद में उन्होंने कहा, ये जो महाप्रसाद बचा है आप दोनों जाकर उस सेठ को दे दीजिए पहले। तो दोनों चले गए महाप्रसाद लेकर। वो तो राह देख ही रहा था, पति बाहर रहा, वरदाचार्य लक्ष्मी अंदर गई और उसने महाप्रसाद उसके सामने रखा, हमारे गुरु महाराज ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है। तो ये महाप्रसाद खाने लगा। और महाप्रसाद का एक ऐसा गुण है, जैसे अगर हम विष खाते हैं या दवा खाते हैं तो आपको पता नहीं चला आप क्या खा रहे हैं, लेकिन परिणाम जरूर होगा। आप आपको मालूम है ये दवा है या नहीं है, लेकिन दवा अंदर जाएगी तो काम करेगी। उसी प्रकार से ये महाप्रसाद कार्य करने लगा। जब तक कि उसका प्रसाद लेकर खत्म हो गया, उसके आंखों से आंसू आने लगे, वो पवित्र हो गया। वो सोचने लगा, ये कैसे स्त्री है कि जो वैष्णवों के सेवा के लिए इस प्रकार का त्याग कर सकती है, और मैं कितना घिनौना हूं, कितना नीच हूं, कितना पापी हूं कि जो मैं ऐसे स्त्री के बारे में, ऐसी पतिव्रता स्त्री के बारे में ऐसे विचार रख रहा हूं। और तुरंत जोर से रोते रोते लक्ष्मी के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा करो, आप मेरी माँ के तुल्य है और आपके बारे में मुझे ऐसे विचार आए, मेरे ऊपर एक कृपा और करिए, आप मुझे भी आपके गुरुदेव के दर्शन करवाइए। तो गुरु महाराज के पास लेके गए और उसका परिवर्तन रामानुजाचार्य स्वयं देख चुके थे। रामानुजाचार्य ने अपने हाथों से उसको आशीर्वाद दिया और उसको दीक्षा भी दे दी, वो भी एक भक्त बन गया। उसी समय वहां पर यज्ञेश पूरे दिन राह देखता रहा, सारे व्यंजन बनाकर सोच रहा था अभी गुरु महाराज आएंगे, अभी गुरु महाराज आए नहीं तो उसने अपने जो सेवक है उनको भेजा था कि जाके देख के आ जाओ कहाँ है गुरु महाराज। तो उनको पता चला रे वरदाचार्य के घर में है। तो वहां पर हाफता हाफता पहुंचा, गुरुदेव मुझसे क्या गलती हो गई, आप क्यों नहीं आए। तभी रामानुजाचार्य ने कहा कि देखो ये दुख तुम्हारे तुम्हें किस लिए हुआ है, इसलिए कि मैं नहीं आया। बोला हाँ, मैंने सारी योजना बनाई थी, मैं तो राह देख रहा था, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि जो मेरे दो भक्त आपके पास आए थे उनको आपने पानी तक नहीं पिलाया, आपने ध्यान भी नहीं दिया, क्यों मैं ऐसे घर में जाऊं। हमारा जो सिद्धांत है क्या है, वैष्णव सेवा। तो इस प्रकार के श्रीपाद रामानुजाचार्य इस वैष्णव सेवा के बारे में अनेकों बार ये दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा की जाती है और वैष्णव सेवा करने से व्यक्ति कितना महान बन सकता है, कितना महान बन सकता है। हम कुछ ही समय पहले दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा सुन रहे थे अपने निजी हर दिन के नित्य श्रीमद् भागवतम क्लास में, प्रवचन में। वहां क्या दिखता है, अम्बरीश महाराज जानते भी नहीं थे कि उसके पास कितनी ताकत है। दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे, सारे सिद्धियां प्राप्त थी, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, सारा ज्ञान प्राप्त था। उनके सामने अम्बरीश महाराज कौन है? एक साधारण गृहस्थ, राजा है लेकिन गृहस्थ है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, ऐसे वो सोच रहे थे। लेकिन उनके हाथों का एक ही कार्य था, वैष्णवों की सेवा। इसलिए अम्बरीश महाराज इतने बलशाली हो गए थे कि दुर्वासा मुनि उनको मारना चाहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र स्वयं आकर दुर्वास मुनि की जान खतरे में आ गई। तो यह बल भी प्रदान करता है, वैष्णवों की सेवा से व्यक्ति को बल मिलता है। कौन सा बल? आध्यात्मिक बल। हमारे कमल लोचन प्रभु बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि हम, हमारा युग धर्म है हरिनाम और वैष्णव सेवा। तो हरिनाम में हम पहले पहले तो जोर जोर से नाम लेते हैं एक मशीन की तरह, जैसे हमारी मशीन मिलती है ना हरिनाम की मशीन, तो लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा चलते रहता है बराबर। तो ये मशीन है वो, लेकिन वो केवल रटना तोते की तरह, ये हरिनाम का सही उच्चारण नहीं है। हरिनाम के साथ अंदर से भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, इसकी भावना क्या है। तो हरिनाम लेते समय जिस प्रकार से भावना होनी चाहिए, उसी प्रकार से वैष्णवों की सेवा करते समय भी उसी प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो कमलोचन प्रभु कह रहे थे कि ये जो हरिनाम लेते समय हमें एक रुचि की स्थिति आती है, जो आनंद आना चाहिए हरिनाम लेते समय। पहले मैकेनिकल होता है, 16 माला करना ऐसे लगता है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो भक्त अग्रेसर बन गए हैं, भक्ति में आगे पहुंच चुके हैं, उनके लिए हरिनाम लेना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। 24 घंटा वो हरिनाम ले सकते हैं, 24 घंटा, बाहर से हम देखें या नहीं देखें। श्रील प्रभुपाद के बारे में कहा जाता है, एक बार उनके भक्तों के साथ में ये एक टीवी का प्रोग्राम देने के लिए गए थे, और उस प्रोग्राम के स्टेज पर सब माइक वाइक सब सेटिंग हो गया, और फिर उसके बाद में साइलेंस हो गया एकदम। उसके बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला, कीर्तन करने वाले हैं प्रभुपाद और उनके शिष्य, तो उस समय एक आवाज आ रही है, तो सब लोग ये आवाज कहां से आ रही है, सब लोग ढूंढ रहे हैं आवाज कहां है, सब मशीन को टाइट कर रहे हैं, यहां वहां देख रहे हैं, आवाज कहां से आ रही पता नहीं चलता है। फिर गुरुदास प्रभु ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, और फिर देखा कि प्रभुपाद के कॉलर के ऊपर माइक लग चुका था, और प्रभुपाद मन ही मन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम चल ही रहा था उनको, बाहर से कोई देख नहीं रहा था, लेकिन प्रभुपाद अंदर से कीर्तन चालू ही रखे थे। उसके कारण वो आवाज आ रही थी, तभी उन्होंने कहा प्रभुपाद इसको आपको रोकना पड़ेगा। 24 घंटा क्यों? उनकी रुचि है। लेकिन रुचि भगवान की कृपा से ही आती है। जब हम भगवान को दिखाते हैं उत्सुकता, हमारी उत्साह दिखाते हैं जब करने में, तब भगवान उस उत्साह से प्रसन्न होकर देते हैं। लेकिन तो भगवान के नाम के प्रति रुचि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वैष्णवों की सेवा हमारे हाथ में है कि नहीं? आप जब चाहे तब कर सकते हो। हरिनाम के प्रति रुचि आपके हाथ में नहीं है, हरिनाम जब वो प्रसन्न होगा तभी आपको रुचि मिलेगी, लेकिन वैष्णव सेवा जब आप चाहे तभी आप कर सकते हो, ये उसका गुण है। इसलिए हरिनाम लेते लेते बहुत प्रेम से कैसे वैष्णव सेवा करनी चाहिए, इसका जब सही फायदा हमें होना चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? उत्साह से करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वैष्णवों की सेवा में मिल, कोई भी सेवा मिली है तो क्या करे, युग धर्म है वैष्णव सेवा है करना ही पड़ेगा ना, ऐसे नहीं। बहुत आनंद से मुझे वैष्णव के सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है, मेरे जैसा और कोई भाग्यशाली है नहीं। उत्साह से करना चाहिए और बहुत धन्यवाद देते समय होने चाहिए। जब वैष्णव की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है हमें तो धन्यवाद देने, धन्यवाद मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अगर वैष्णव की हम सेवा करते हैं तो जो भक्ति का जो बल है ये हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। और उस भक्ति के बल से, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, जैसे हम नवसुखिया जो भक्त है वो क्या करता है, केवल मूर्ति की पूजा करता है, वैष्णव को देखता तक नहीं। उसके लिए नीति नियम, मूर्ति का सजावट, यही सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम भक्त है, वो क्या है, भगवान के साथ साथ या भगवान से अधिक वैष्णव को सम्मान करता है। श्री रूप गोस्वामी वो हमें बताते हैं कि अगर आपके घर में या आपके मंदिर में आप भगवान की अर्चना कर रहे हैं, दिया अगरबत्ती सब कुछ घुमा रहे हैं, और उस समय कोई वैष्णव आता है अंदर, और उस वैष्णव का स्वागत करने के लिए और कोई नहीं है, तो आपको पूजा को रोक कर उस वैष्णव को आसन देना चाहिए और उसके परमिशन से फिर से पूजा आरंभ करनी चाहिए। यह शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में कहते हैं, देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कितना महत्व है, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते मे भक्त तमामता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त है वो सही में मेरे भक्त नहीं है, परंतु जो भक्त मेरे भक्तों के भक्त है वो सही में मेरे भक्त है। तो ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान फिर से एक बार कहते हैं, मद भक्ता पूजा भी अधिक हो, जो मेरे भक्त है उसकी पूजा मेरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान शिव जी जो कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वो अपनी पत्नी पार्वती को क्या कहते हैं कि आराधना यानी पूजा अर्चा में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, विष्णु की है। लेकिन विष्णु से भी सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, तदीयानाम समर्चनम, जो तदीया यानी विष्णु से संबंधित लोग हैं, विष्णु से संबंधित जो चीजें हैं, इनकी पूजा अर्चा अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम जो खास करके गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से बताते हैं कि हमारी मनस्थिति कैसे होनी चाहिए हर समय, क्योंकि हम भक्ति में आने के बाद में शुरू शुरू में शुरू का काल बहुत अत्यंत मधुर होता है। हाँ, जो जो भक्त पहले पहले आते हैं भक्ति में, जैसे प्रवेश करते हैं, इट इज हनीमून। हाँ, ये इतना आनंददायी काल होता है, बहुत आनंद आता है उनको भगवान के भक्ति में। वो हर भक्त को जो देखता है तो बोलते क्या भक्त है, वाह, इसके मैं चरण धो के पीऊं। फिर 6 महीने हो जाते, 8 महीने हो जाते, 1 साल हो जाते, फिर उसको पता चलता ये भक्त में तो ऐसे कमी है, उस भक्त में वो कमी है, हर व्यक्ति की कमी देखने लगता है और अपने आप में कुछ देखता, मैं वैसा नहीं हूं, हाँ? मेरे में गुण देखो, वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार का ये जो अनर्थ है हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, ये साधारण है, क्योंकि भगवान के और भगवान के भक्तों की ईर्ष्या की वजह से हम यहां पर इस संसार में है। तो ईर्ष्या ऐसे छुपेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं बाहर आएगी। वो क्या करती है, पहले जिनको हम शुद्ध भक्त करके देखते थे उनको अभी हम देखते हैं कि वो नवसुखिया भक्त हैं, उनको ये नहीं आता, वो बराबर ये नहीं करते, उसकी सीखा ऐसी है, उसकी धोती ऐसी है, हाँ, अलग अलग चीजें, उसको श्लोक नहीं आते, कैसे खाना खाता है, मतलब जिनको कोई महत्व नहीं, ऐसे चीजों को लेकर भी हम भक्तों को दोष दे सकते हैं। देखिए 6 महीने पहले क्या था, वो हर चीज को, हर भक्त को एक शुद्ध भक्त रूप में देखता था। इसलिए भक्तों को कैसे रहना चाहिए, हमेशा हमेशा नवसुखिया भक्ति रहना चाहिए। जो नया नया आया है उसी स्थिति में हमेशा रहो। श्रील हरिदास ठाकुर की एक बहुत सुंदर कहानी है इसमें। हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त थे कि जहां पर जाते थे लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हरिनाम से। वो तो केवल भगवान का नाम लेते लेते चलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और इस प्रकार से जाते थे। और सारे लोग तथाकथित हिंदू ब्राह्मण और मुसलमान सब लोग सोचते थे ये कौन है व्यक्ति जिसके पीछे ऐसे लोग पागल हो गए हैं। तो दोनों जाकर, ब्राह्मण भी जाकर मुसलमान राजा को कंप्लेन करते थे, मुसलमान भी बोलते थे कि ये मुसलमान होते हुए भगवान का नाम लेता हरि का, इसको जेल में डाल दो। तो राजा ने बहुत बार सोचा सुना, फिर बोला अरे छोड़ दो उसको, वो पीर है। बोला पीर वीर कुछ नहीं, बहुत तकलीफ देता है, उसको डाल दो अंदर। बोले ठीक है डाल दो अंदर। तो जैसे उसको अंदर डाला तो सब लोग जो अंदर लोग थे वो खुश हो गए, बोला हरिदास ठाकुर यहां पर आ रहे हैं। सब लोग खिड़की में जमा होकर देख रहे हैं हरिदास कैसे आ रहे हैं। तो जैसे हरिदास आए सब लोग बोलने लगे हरिदास हमारे को कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो, क्योंकि जानते थे हरिदास ठाकुर की महानता को। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं तुम जैसे है वैसे ही रहो। बोला क्या हाँ ये कौन सा आशीर्वाद है? उनको बहुत दुख हो गया। बोला हरिदास से कैसा आपने आशीर्वाद दिया? बोला मेरे आशीर्वाद को समझो, क्योंकि आज आप इस असहाय स्थिति में हो इसलिए आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, ये चाहते हो कि मैं भगवान का नाम आपको दूं। आप इसी असहाय स्थिति में रहो, ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। तो भक्त हमेशा ऐसी इसी प्रकार से जो असहाय स्थिति है जिसमें वो हमेशा वैष्णवों के आश्रय से रहता है, हरिनाम के आश्रय से रहता है, ये स्थिति हमारी हमेशा होनी चाहिए, तब हमें भक्ति में कोई धोखा नहीं है। अन्यथा ये भक्ति का मार्ग इतना उच्च मार्ग है, इसकी जो फिलॉसफी है, इसका तत्वज्ञान है, इतना उच्च है कि हम नीच होते हुए भी ये सोचते हैं कि हम उच्च बन गए। ये बहुत डेंजरस बात है। कभी कभी भक्त लोग बाहर के जो दूसरे संप्रदाय है, दूसरे धर्म है, उनको भी ये सोचते हैं ये तो पापी लोग हैं। कभी सोचना नहीं चाहिए ऐसा। प्रभुपाद ने कभी ऐसे सोचा नहीं। भले उनकी फिलॉसफी उच्च स्तर में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग पे ही है। हमारे एक भक्त ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया इसके ऊपर कि हम लोग ने ऐसे विद्यालय में प्रवेश किया है जहां पर आध्यात्मिकता की पीएचडी मिलती है। आध्यात्मिकता, सर्वोत्तम आध्यात्मिकता क्या है यह हमें वहां मिलता है। और भले ही दूसरे लोगों ने ऐसे विद्यालय में प्रवेश किया होगा जहां पर केवल 10वीं कक्षा तक ही जाते हैं, लेकिन शायद हम पहली कक्षा में हैं, वो पहले ही से 8वीं कक्षा में है, तो उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहले से ही पीएचडी बन गया, समय है। और कैसे बनेंगे? इसी वैष्णव सेवा के बल के ऊपर, इसी हरिनाम के बल के ऊपर। इसलिए हम जो सारे भक्त यहां पर बैठे हैं, हर रविवार को यहां पर आते हैं, ऐसे आते रहिए, दूसरे लोगों को लेके आते रहिए। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ ऐसा मानव जन्म है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारह ये बहु सिंदूरे। ये मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, और इसमें अगर हमें सत्संग मिल गया, वैष्णवों का संग मिल गया, तो इससे अधिक और कोई भाग्य नहीं हो सकता। आपको करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, ये भाग्य इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये करोड़ रुपए आपका बैंक बैलेंस, आपकी विद्वत्ता, आपका शारीरिक बल, आपकी बुद्धि, आपका मित्र परिवार, आपका देश, ये सब कुछ मृत्यु के समय एक शून्य है, बहुत बड़ा शून्य, इसको कोई वैल्यू नहीं है। आप कहेंगे यमराज रुक जाओ, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 5 आपके, हाँ कोई फायदा नहीं, एक क्षण भी अधिक नहीं मिलेगा। हमारा बल क्या है? हरि नाम और वैष्णव सेवा। और वैष्णव सेवा का मतलब है नम्रता से, उत्साह से, प्रेम से की गई वैष्णव सेवा, अत्यंत प्रेम से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं। एक पिता को आप कितना भी प्रेम से सेवा करो वो प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन उसके बच्चे को आप प्रेम से सेवा करो, प्रेम से उसके सिर के ऊपर हाथ घुमाओ, पिता बहुत प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से भगवान जब देखते हैं कि अरे ये भक्तों को बहुत प्रसन्न कर रहा है, भक्तों को बहुत सेवा करता है, ये मेरे पास आने के लायक है, ये योग्य है। इसलिए महाप्रभु ने हमें क्या दिया है? हमारी आइडेंटिटी, हमारा स्वरूप। कौन सा स्वरूप है? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हम केवल दासों के दास है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और इसी में हमारी महानता है, हमारे इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की महानता है, इसी में श्रील प्रभुपाद और सारे आचार्यों की महानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही अपने जीवन का लक्ष्य रखा है कि हम कैसे दास दासानु। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं क्या हूं? दास दासानु दास हूं। यही चैतन्य महाप्रभु का कहना है और यही हमें बनना है। और उसके लिए दो ही उपाय है, कौन से? वैष्णवों की सेवा और हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
जय जय श्री राधे श्याम। केवल 2 मिनट बैठे रहिए सभी वैष्णव, बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। सबसे पहले हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे इस